हम ना अक्सर उम्मीद करते हैं कि जब भी कोई किताब उठाएं या कोई पॉडकास्ट सुने या किसी ज्ञानी व्यक्ति से बात करें तो हमें बस तुरंत एक समाधान मिल जाए।
हाँ, एक रेडीमेड फिक्स।
बिल्कुल, कोई ऐसा अचूक फॉर्मूला या मतलब कोई 5-स्टेप गाइड मिल जाए जिसे आजमाया और जीवन की सारी मुश्किलें, सारा तनाव एकदम छूमंतर हो गया। इंसान की फितरत ही ऐसी बन चुकी है आजकल, हम हर चीज का ना एक क्विक फिक्स चाहते हैं।
सही कह रहे हैं आप।
लेकिन तब क्या हो जब कोई बहुत ही प्राचीन और प्रतिष्ठित ज्ञान हमें कोई झटपट समाधान देने से ही साफ इनकार कर दे। आज की इस गहन चर्चा में हम कुछ ऐसी ही वैचारिक गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास डॉक्टर जॉन वॉल्टन द्वारा बुक ऑफ जॉब पर दिए गए 30वें सत्र के कुछ बेहद दिलचस्प और विचारोत्तेजक नोट्स हैं।
और ये नोट्स वाकई में बहुत गहरी बात कहते हैं।
हाँ, तो इस पूरी चर्चा का मुख्य विषय ये है कि किसी जटिल और प्राचीन ज्ञान को असल जीवन की उथल पुथल में कैसे लागू किया जाए। और मजे की बात यह है कि ये सामग्री हमें ये नहीं बताती कि संकट के समय क्या करना है, बल्कि ये पूरी तरह से इस बात पे केंद्रित है कि कैसे सोचना है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं।
इस विषय पर बात करना ना आज के समय में शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। मतलब हम जानकारी के एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हर छोटी बड़ी समस्या के लिए एक चेकलिस्ट या टू डू लिस्ट मौजूद है।
हाँ, गूगल करो और लिस्ट हाजिर है।
बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर वॉल्टन का ये अध्ययन उस पूरी मानसिकता को ही पलट कर रख देता है। वो स्पष्ट करते हैं कि जब जीवन में कोई असल तूफान आता है, कोई ऐसा संकट जो इंसान को भीतर तक हिला दे, तो वहां कोई भी बनी बनाई चेकलिस्ट काम नहीं आती।
वो काम क्यों नहीं आती?
क्योंकि उस समय दिमाग उस स्थिति में होता ही नहीं है। ऐसे समय में केवल सही दिशा में सोचने की आदत यानी एक मजबूत वैचारिक नींव ही किसी को डूबने से बचा सकती है। यह ज्ञान को महज कुछ नियमों की तरह नहीं बल्कि दुनिया को देखने के एक चश्मे की तरह इस्तेमाल करने का तरीका है।
ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है, क्योंकि यहीं से ना एक बहुत बड़ी बहस शुरू होती है एक्शन पॉइंट्स बनाम थिंकिंग पॉइंट्स की।
हाँ,
हमें से ज्यादातर लोग जब भी कोई सेमिनार अटेंड करते हैं या कोई प्रेरणादायी किताब पढ़ते हैं,
हाँ,
तो पन्ने के अंत में कुछ एक्शन पॉइंट्स लिख लेते हैं।
हाँ,
कि कल सुबह उठकर मुझे ये 3 काम करने हैं।
बिल्कुल,
हमारा दिमाग डूइंग यानी कुछ करने के लिए ही प्रोग्राम्ड है।
हाँ,
लेकिन स्रोत के अनुसार डॉक्टर वॉल्टन यहाँ बिल्कुल विपरीत दिशा में जा रहे हैं। उनका मानना है कि बुक ऑफ जॉब जैसी गहरी किताबों का उद्देश्य हमें फौरी एक्शन पॉइंट्स देना नहीं है।
हाँ,
बल्कि थिंकिंग पॉइंट्स या सोचने के नए नजरिए देना है।
हाँ,
पर ईमानदारी से कहूँ तो मुझे ये बात थोड़ी अव्यवहारिक लग रही है। मतलब जब किसी इंसान के सिर पे पहाड़ टूट रहा हो तो उसे एक्शन लेना चाहिए या बैठ के सोचना चाहिए?
यही तो हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है जिसे डॉक्टर वॉल्टन बहुत ही बारीकी से सुलझाते हैं। वो इसे समझाने के लिए ना एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण देती हैं। मेरा मतलब है वो देते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति एक मैराथन दौड़ना चाहता है।
अच्छा,
तो क्या वो दौड़ वाले दिन सुबह उठकर पहली बार दौड़ने की कोशिश करेगा?
नहीं, वो तो बेवकूफी होगी।
बिल्कुल। या फिर एक कॉन्सर्ट में पियानो बजाने वाला कलाकार, क्या वो सीधे मंच पर जाके हजारों लोगों के सामने अचानक कोई नई धुन बजाना सीखता है? बिल्कुल नहीं। उस एक दिन के पीछे महीनों और सालों की खामोश तैयारी होती है।
ओह, मैं समझ रहा हूँ आप कहाँ जा रही हैं।
कोई बड़ी विपत्ति आती है तब इंसान का दिमाग एक सर्वाइवल मोड में चला जाता है। उस वक्त किसी के पास जटिल वैचारिक किताबें पढ़ने का या धैर्य के साथ दुनिया के काम करने के तरीके को समझने का ना तो समय होता है और ना ही मानसिक ऊर्जा।
ये बात तो 100% सच है। जब कोई इंसान गहरे सदमे में होता है तो उसका दिमाग नई जानकारी को प्रोसेस ही नहीं कर पाता, एक तरह का कॉग्निटिव ओवरलोड हो जाता है।
एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, कॉग्निटिव ओवरलोड।
मुझे डॉक्टर वॉल्टन के नोट से एक और बात याद आ रही है जो उन्होंने एक बहुत ही रोजमर्रा की व्यवहारिक एनालॉजी के साथ बताई थी। उन्होंने कहा कि जब उनके बच्चे कार चलाना सीख रहे थे तो उन्होंने इस बात का इंतजार नहीं किया कि किसी रात एक सुनसान, अंधेरी और बारिश वाली सड़क पर कार का टायर पंचर हो जाए और तब वो बच्चों को टायर बदलना सिखाएं।
क्योंकि उस लोग तो पैनिक हो जाएगा।
हाँ, घबराहट में कोई कुछ नहीं सीख सकता। इसके बजाय उन्होंने एक आरामदायक दिन चुना जब धूप खिली थी और अपने घर के बाहर सुरक्षित ड्राइवे में बच्चों को टायर बदलना सिखाया।
ये उदाहरण पूरी तरह से स्पष्ट कर देता है कि तैयारी का असली विज्ञान क्या है। हम उस समय के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं जब हम शायद कुछ नया सीखने की या तार्किक रूप से सोचने की मनस्थिति में बिल्कुल न हो। ड्राइवे में टायर बदलना सीखना दरअसल हमारे दिमाग में एक थिंकिंग पॉइंट स्थापित करना है।
लेकिन जरा रुकिए, यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये पूरी सोच इंसानी फितरत के खिलाफ नहीं है?
वो कैसे?
मेरा मतलब है, जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, धूप खिली हो, परिवार में सब खुश हों, तब अचानक से विपत्ति, दुख और मृत्यु के बारे में सोचना और उसके लिए खुद को वैचारिक रूप से तैयार करना, क्या ये थोड़ा अजीब और निराशावादी नहीं लगता? ऐसा लगता है जैसे हम खुशियों को जीने के बजाय किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे हों और बेवजह खुद को डरा रहे हों।
इसे निराशावाद समझना ना एक बहुत ही आम भूल है, लेकिन असल में ये बिल्कुल इसके उलट है। इसे ऐसे देखिए, ये अनहोनी का इंतजार करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर एक इनर रिजर्व या एक मानसिक और वैचारिक भंडार बनाना है।
एक वैचारिक भंडार?
हाँ, जरा सोचकर देखें कि किसी के दिमाग के भीतर एक बहुत ही शांत पुरानी सी लाइब्रेरी है। जब जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो इंसान उस लाइब्रेरी की अलमारियों में ज्ञान, समझ और तर्कों की किताबें सहेज कर रखता है। ये एक धीमा और सुकून भरा काम है।
अच्छा, तो हम अच्छे समय में वो किताबें जमा कर रहे हैं।
बिल्कुल। फिर जब अचानक कोई बड़ा तूफान आता है और बाहर की दुनिया में अंधेरा छा जाता है, तो उस इंसान को नई किताबें ढूंढने बाहर नहीं जाना पड़ता। वो बस अपने भीतर की उस लाइब्रेरी में जाता है और सही किताब निकाल लेता है।
क्या बात है।
डॉक्टर वॉल्टन इसी आंतरिक भंडार को थिंकिंग पॉइंट्स कहते हैं। ये कोई निराशावाद नहीं है, बल्कि एक ऐसी गहरी समझ है जो बाद में विपत्ति के समय हमारे व्यवहार को बहुत ही स्वाभाविक रूप से निर्देशित करती है।
ये लाइब्रेरी वाली बात ना बहुत गहराई तक जाती है, यानी हम जानबूझकर खुद को मानसिक रूप से मजबूत कर रहे हैं ताकि जब जरूरत पड़े तो हम बिखर ना जाएं।
सही कहा।
लेकिन अगर हम खुद को इस तरह से पहले से तैयार कर रहे हैं तो हमें ये भी स्पष्ट होना चाहिए कि हम किस चीज के लिए तैयार हो रहे हैं। हम अक्सर जब किसी दुखी व्यक्ति के पास जाते हैं या कोई आध्यात्मिक किताब पढ़ते हैं तो हमारी सबसे पहली उम्मीद क्या होती है? सांत्वना, कोई हमें दिलासा दे।
हाँ, कम्फर्ट।
लेकिन स्रोत के अनुसार यहीं पर एक बहुत बड़ा झटका लगता है। बुक ऑफ जोब पढ़ने वालों को कोई सांत्वना या कम्फर्ट नहीं देती। यहां तक कि खुद जोब को, जो उस कहानी में इतना असीम कष्ट सहरा था, उसे उसके दोस्तों से, परिवार से या तक कि ईश्वर से भी कोई सांत्वना नहीं मिलती। और सबसे अजीब बात तो ये है कि अंत में जब उसे सब कुछ वापस मिल भी जाता है तो वो भी सांत्वना देने के उद्देश्य से नहीं किया गया था। डॉक्टर वॉल्टन कहते हैं कि ये किताब हमें सांत्वना नहीं बल्कि स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस सिखाती।
ठीक हो जाएगा या ये तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए था।
हाँ, यही तो इंसानियत है,
है ना? लेकिन डॉक्टर वॉल्टन तर्क देते हैं कि केवल सांत्वना की उम्मीद करना कभी कभी हमें वास्तविकता से दूर ले जाता है। यह हमें एक झूठे भ्रम में रखता है। जीवन का असली लक्ष्य महज सांत्वना पाना नहीं है, बल्कि ईश्वर के नियंत्रण की शर्तों को और दुनिया जैसी है उसे उसी रूप में स्वीकार करना है।
सच कहूं तो एक आम इंसान के लिए इस स्वीकृति को पचा पाना बहुत मुश्किल होगा।
मुश्किल तो है।
ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति किसी भयानक दुर्घटना के बाद दर्द से तड़प रहा हो और डॉक्टर से गिड़गिड़ाकर एक पेन किलर मांग रहा हो। वो चाहता है कि उसका दर्द किसी तरह बस सुन हो जाए। लेकिन डॉक्टर उसे पेन किलर देने के बजाय उसके पास कुर्सी खींचकर बैठ जाए और उसे उस चोट का पूरा विज्ञान, नर्वस सिस्टम का काम करने का तरीका और दर्द की वास्तविकता समझाने लगे। वो व्यक्ति तो यही सोचेगा ना कि ये कैसा डॉक्टर है, मुझे ज्ञान नहीं राहत चाहिए।
आपकी ये तुलना बिल्कुल सटीक है कि वो कितना क्रूर लग सकता है उस पल में। सांत्वना वो पेन किलर है जिसका असर कुछ घंटों में खत्म हो जाएगा, लेकिन स्वीकृति वो सर्जरी है जो स्थायी इलाज करती है।
ये बहुत गहरा था।
डॉक्टर वॉल्टन अपने नोट्स में इसे समझाने के लिए ना एक और बहुत ही शानदार उदाहरण देते हैं जिसे उन्होंने वित्तीय संकट से जोड़ा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत भारी कर्ज और आर्थिक संकट में फंसा है। सांत्वना मांगना या हर विपत्ति के पीछे एक स्पष्टीकरण ढूंढना ऐसा है जैसे वो व्यक्ति उस भारी संकट के बीच एक एक करके छोटे छोटे बिल चुकाने की कोशिश कर रहा होगा,
बस किसी तरह सरवाइव कर रहा हो।
हाँ, वो बस किसी तरह आज का दिन काट रहा है, लेकिन वो कभी आजाद नहीं हो पाएगा। इसके विपरीत स्वीकृति जो ये किताब सिखाती है वो एक बहुत ही मजबूत सेविंग्स अकाउंट खोलने जैसा है।
एक मिनट, एक सेविंग्स अकाउंट दुख के समय में?
हाँ, जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि ये दुनिया कैसे काम करती है और ईश्वर के नियंत्रण की प्रकृति क्या है, कि दुख इस जीवन का एक हिस्सा है और सब कुछ हमारे मन मुताबिक नहीं चलेगा, तो हम भविष्य के लिए वैचारिक पूंजी जमा कर लेते हैं।
अच्छा, तो वो पूंजी हमें बचाती है?
बिल्कुल। जो इंसान स्वीकृति को अपना लेता है वो स्पष्टीकरण या जवाबों में सांत्वना ढूंढना बंद कर देता है। वो उस तरीके को दिल से स्वीकार कर लेता है जिस तरह से ये दुनिया बनाई गई है। ये सेविंग्स अकाउंट संकट के समय उसे दिवालिया होने यानी पूरी तरह से टूट जाने से बचाता है।
इसका मतलब है कि हर दर्द का कारण ढूंढना बंद करना होगा। लेकिन अगर हमें इस वास्तविकता को और नियंत्रण की उन शर्तों को बिना सवाल किए स्वीकार करना है, तो दिमाग में ये बात जरूर आती है कि ये नियंत्रण वास्तव में है किसके हाथ में।
सही सवाल है।
जिस शक्ति के आगे हम समर्पण कर रहे हैं उसका स्वरूप क्या है, और यहीं से ईश्वर के स्वरूप को लेकर इंसान की जो सदियों पुरानी गलत धारणाएं हैं उन पर बात करना बहुत जरूरी हो जाता है।
श्रोत स्पष्ट रूप से कहता है कि ईश्वर कोई पिक्यून नहीं है।
पिक्यून ये एक बहुत ही सटीक शब्द है जिसका यहाँ इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब है कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही छोटी छोटी गैर जरूरी बातों पर मीन मेख निकालता हो,
मतलब हर बात पे टोकने वाला।
हाँ, या जो हमेशा दूसरों की गलतियां पकड़ने के लिए तैयार बैठा हो। एक ऐसा कठोर बॉस जो आपकी एक छोटी सी गलती पर आपकी पूरी महीने की मेहनत को खारिज कर दे। डॉक्टर वॉल्टन जोर देकर कहते हैं कि ईश्वर ऐसा नहीं है, इसके बजाय वो ग्रेस यानी कृपा का प्रतीक है, और इसके साथ ही वो कोई केओस क्रिएचर भी नहीं है। केओस क्रिएचर इससे मतलब एक ऐसा प्राणी जो पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल हो, जो मनमाना काम करे, जिसके कोई नियम ना हो, और जो महज अपनी ताकत के नशे में कुछ भी उथल पुथल मचा दे।
बिल्कुल, ईश्वर न तो छोटी छोटी गलतियां ढूंढने वाला कोई अकाउंटेंट है और न ही कोई अराजक तानाशाह जो बिना किसी कारण के तबाही मचाता हो। लेकिन इस पूरी चर्चा का सबसे अहम बिंदु यह है कि डॉक्टर वॉल्टन कहते हैं कि ईश्वर हमारे प्रति जवाबदेह नहीं है।
जवाबदेह नहीं है।
इसे समझाने के लिए स्रोत में एक बहुत ही भावुक और परेशान कर देने वाली कहानी का जिक्र है। एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी जिंदगी एक सच्चा और वफादार इंसान रहा, जिसने हमेशा सही काम करने की कोशिश की, जब वो एक लाइलाज बीमारी के कारण अपने जीवन के अंतिम दिनों में था तो वो शांति से मरने के बजाय एक गहरे खौफ में जी रहा था।
खौफ में क्यों?
क्योंकि उसे ये डर सताने लगा था कि शायद उसने जीवन में पर्याप्त अच्छे काम नहीं किए हैं, शायद उससे कोई चूक हो गई है और ईश्वर अंत में उसके कामों में कमियां निकालेगा और उसे सजा देगा।
यार ये तो सच में बहुत ही दुखद है। जरा सोचिए, एक इंसान जिसने जीवन भर अच्छाई का रास्ता चुना है, वो अपने आखिरी पलों में सुकून के बजाय इस आतंक में जी रहा है कि उसका बॉस उसके काम से खुश होगा या नहीं। ये हमें इंसानी मनोविज्ञान के बारे में बहुत कुछ बताता है कि हम कैसे अपने मन में ईश्वर की एक ऐसी डरावनी छवि बना लेते हैं जो बस एक हथौड़ा लेकर हमारी गलतियों का इंतजार कर रहा है।
यही वो जगह है जहाँ इंसान अपनी खुद की कमियों और इंसानी स्वभाव को ईश्वर पर थोप देता है। हम न्याय व्यवस्था, लेन देन और हिसाब किताब की दुनिया में रहते हैं, इसलिए हमें लगता है कि ब्रह्मांड भी ऐसे ही काम करता है।
हम हर चीज को बैलेंस शीट की तरह देखते हैं।
बिल्कुल, जबकि डॉक्टर वॉल्टन बार बार ये याद दिलाते हैं कि अगर हम केवल अपने कर्मों के हिसाब किताब पर टिके रहेंगे तो हम हमेशा डर में जिएंगे। हमें ये समझना होगा कि मूल आधार इंसान की परफेक्शन नहीं बल्कि कृपा है।
लेकिन यह मैं एक बात रखना चाहूंगा, क्या ऐसा नहीं है कि इंसान अक्सर अपनी अच्छाई को साबित करने के चक्कर में परोक्ष रूप से ईश्वर को ही कटघरे में खड़ा कर देता है?
हाँ, होता तो ऐसा ही है।
इंसान की फितरत ही ऐसी है, हम हर चीज को एक व्यापार की तरह देखते हैं। मुझे तो लगता है कि ज्यादातर लोग प्रार्थना को भी एक वेंडिंग मशीन की तरह इस्तेमाल करते हैं।
वेंडिंग मशीन, ये बहुत अच्छा उदाहरण
है ना? जैसे मशीन में 100 रुपए का नोट डाला, बटन दबाया और नीचे से ठीक 100 रुपए ही कीमत का आशीर्वाद, सफलता या स्वास्थ्य बाहर आना चाहिए। अगर वो आशीर्वाद बाहर नहीं आया तो आप मशीन को पीटने लगते हैं कि मैंने तो अपना काम किया था, ये मशीन खराब है।
हाँ, हम शिकायत करने लगते हैं।
हम कहते हैं मैंने इतने अच्छे काम किए फिर भी मेरे साथ बुरा हुआ, मतलब ईश्वर ने अपना काम सही से नहीं किया। वेंडिंग मशीन वाली ये एनालॉजी इस पूरी समस्या की जड़ को बहुत ही शानदार तरीके से समझाती है। हम सच में एक लेन देन या व्यापारिक रिश्ते में जी रहे हैं, और जब कोई इंसान इस लेन देन वाली मानसिकता में गहराई तक उतर जाता है तो अगली स्वाभाविक और खतरनाक गलती जो वो करता है वो है मैनिपुलेशन या हेर फेर।
मैनिपुलेशन, वो कैसे?
जब इंसान सोचता है कि उसने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, उसने वेंडिंग मशीन में बहुत सारे पैसे डाल दिए हैं, तो वो ईश्वर पर अपनी शर्तें थोपने की कोशिश करता है। वो ईश्वर के ही पुराने वादों या धार्मिक ग्रंथों का इस्तेमाल करके उसे किसी कोने में धकेलने की कोशिश करता है कि अब तो आपको मेरी सुननी ही पड़ेगी, मैंने अपना हिस्सा पूरा कर दिया है।
ये तो एक तरह का इमोशनल ब्लैकमेल हो गया। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, अब तुम्हें मेरे लिए ये करना होगा।
100%, और ये हमेशा गलत होता है। डॉक्टर वॉल्टन स्पष्ट रूप से कहते हैं कि प्रार्थनाओं का उद्देश्य कभी भी ईश्वर को बदलना, उसे ब्लैकमेल करना या अपनी मनमर्जी के परिणाम हासिल करना नहीं होता।
तो फिर क्या होता है?
इच्छाओं को ईश्वर की इच्छा के साथ संरेखित करने और हमें भीतर से मजबूत बनाने के लिए होती हैं। इसीलिए प्रार्थनाओं में अक्सर ये भाव होता है कि आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो, न कि मेरी इच्छा पूरी हो। जब हम ईश्वर को अपनी इच्छाओं के अनुसार काम करने के लिए मजबूर करने की कोशिश करते हैं, तो हम दरअसल उसे ईश्वर के पद से हटाकर अपना सेवक बनाना चाहते हैं।
ये बात तो किसी को भी गहरी सोच में डाल सकती है, लेकिन चलिए अगर हम इसे तार्किक रूप से देखें, अगर ईश्वर वो वेंडिंग मशीन नहीं है, अगर वो उदार होने के बजाय केवल योग्य है और वो हमारी इच्छाएं या हमारे अच्छे कर्मों के बदले हमें इनाम देने के लिए बाध्य नहीं है, तो एक आम इंसान के नजरिए से सोचें।
हाँ बताइए।
कोई इंसान ऐसे रिश्ते में क्यों रहेगा? क्या कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे बॉस के लिए काम करेगा जो कभी कोई वेतन ना दे, कोई दिवाली बोनस ना दे, कोई मेडिकल बेनिफिट्स ना दे? इंसान का तो स्वभाव ही है कि वो हर काम के पीछे एक फायदा देखता है। बिना फायदे के कोई सही रास्ते पर क्यों चलेगा?
इस सवाल ने सीधे उस बिंदु को छुआ है जहां ये पूरी चर्चा अपनी सबसे बड़ी ऊंचाई पर पहुंचती है, और इस अवस्था को स्रोत में बहुत ही सटीक नाम दिया गया है, डिसइंटरेस्टेड राइचसनेस, यानी निस्वार्थ धार्मिकता। ये एक ऐसी अवधारणा है जो हमारी उस वेंडिंग मशीन और लेन देन वाली मानसिकता को पूरी तरह से नष्ट कर देती है।
निस्वार्थ धार्मिकता, ये शब्द सुनते ऐसा लगता है जैसे किसी सन्यासी की बात हो रही हो जो सब कुछ छोड़कर पहाड़ों पर चला गया है और जिसे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। क्या डॉक्टर वॉल्टन का यही मतलब है या इसके पीछे कुछ और है?
नहीं नहीं, ये पहाड़ों पर जाने के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये दुनिया के बीच रहकर ही अपनी नीयत को शुद्ध करने के बारे में है। डॉक्टर वॉल्टन इसे इब्राहिम और जॉब के उदाहरण से समझाते हैं। वो एक बहुत ही सीधा लेकिन इंसान की रूह को झकझोर देने वाला सवाल पूछते हैं।
वो सवाल क्या है?
मान लीजिए कि आज किसी इंसान की जिंदगी से वे सारी चीजें छीन ली जाएं जिन्हें वो ईश्वर का आशीर्वाद मानता है, उसकी संपत्ति, उसका स्वास्थ्य, उसकी सफलता, और भविष्य में भी उसे कोई लाभ ना मिले, यहां तक कि मरने के बाद मिलने वाले स्वर्ग या अनंत जीवन का लालच भी पूरी तरह से हटा दिया जाए। क्या तब भी वो इंसान आस्था रखेगा? क्या तब भी वो सही रास्ते पर चलेगा? अगर कोई ईश्वर की सेवा सिर्फ इसीलिए कर रहा है क्योंकि वह अंत में उसे कोई इनाम देगा या स्वर्ग में जगह देगा, तो वो सेवा नहीं है, वो सिर्फ एक व्यापार है।
बाप रे, यानी ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता स्वर्ग पाने का कोई VIP टिकट नहीं है। अगर जन्नत का लालच और नर्क का डर हटा दिया जाए तो कितने लोग सच में सही काम करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है।
बिल्कुल, ईश्वर के साथ रिश्ता कोई ऐसी रोलर कोस्टर राइड नहीं है जिसके अंत में कोई इनाम रखा हो। ये एक साझेदारी है, एक पार्टनरशिप है, जिसे डॉक्टर वॉल्टन कहते हैं किंगडम वर्क।
किंगडम वर्क,
हाँ। जब हम निस्वार्थ धार्मिकता अपनाते हैं तो हम ईश्वर के उद्देश्यों और उसकी बड़ी योजनाओं में साझेदार बनते हैं, और ये साझेदारी मरने के बाद किसी दूसरी दुनिया में शुरू नहीं होती, बल्कि ये यहीं इसी दुनिया में इसी पल में मायने रखती है। हम इसलिए सही नहीं करते कि हमें कुछ मिलेगा, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वो सही है।
ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है, और मुझे लगता है कि जब ये निस्वार्थ धार्मिकता किसी इंसान के भीतर पूरी तरह से बस जाती है तो इसका असर केवल उसके दिमाग तक सीमित नहीं रहता।
बिल्कुल नहीं,
ये बाहरी दुनिया में भी साफ दिखाई देता होगा, खासकर तब जब वो व्यक्ति वास्तविक दुनिया में किसी भयानक पीड़ा या त्रासदी से गुजर रहा हो, क्योंकि दुनिया तो उसी को देखती है कि ये व्यक्ति जिसके पास अब कुछ नहीं बचा उस संकट के समय कैसा व्यवहार कर रहा है।
आप बिल्कुल सही दिशा में जा गए हैं। डॉक्टर वॉल्टन के स्रोत में इसी संदर्भ में 1 पीटर 3:15 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिक्र किया गया है। अक्सर इतिहास में और आज भी लोग इस हिस्से का इस्तेमाल केवल धार्मिक बहस जीतने के लिए, तर्कों में दूसरों को हराने के लिए या अपनी मान्यताओं को सही साबित करने के लिए करते हैं।
हाँ, एक डिबेट जीतने के लिए।
लेकिन डॉक्टर वॉल्टन इसका एक बिल्कुल अलग और गहरा अर्थ बताते हैं। वो कहते हैं कि असल में ये हिस्सा किसी को हराने के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक भयानक पीड़ा सह रहे इंसान के पास बची उम्मीद के बारे में है।
मतलब जब सब कुछ खत्म हो गया हो, सारी उम्मीदें टूट चुकी हों, तब भी किसी तरह उम्मीद का दामन थामे रहना।
हाँ, लेकिन ये कोई खोखली उम्मीद नहीं है। कल्पना कीजिए कि किसी इंसान की जिंदगी पूरी तरह से बिखर चुकी है, उसका सब कुछ लुट चुका है और उसके आसपास के लोग जो उसे देख रहे हैं वे ये मानकर बैठे हैं कि अब ये इंसान टूट जाएगा, बिखर जाएगा या दुनिया को गालियां देगा,
जो कि एक नॉर्मल रिएक्शन होगा।
बिल्कुल। लेकिन इसके बजाय वे उस व्यक्ति को इस तबाही के बीच भी एक अजीब सी शांति और उम्मीद से भरा हुआ देखते हैं। तब वे हैरान होकर खुद आगे बढ़कर उससे इसका कारण पूछते हैं। वे पूछते हैं कि इतनी भयानक स्थिति में भी जब तुम्हारे पास रोने के हजार कारण हैं, तुम इतने शांत और उम्मीद से कैसे भरे हो?
और तब असल बात सामने आती है।
हाँ, तब उस वक्त उस व्यक्ति को अपने उस विश्वास, उस थिंकिंग पॉइंट के बारे में बताना होता है। ये दूसरों पर अपनी बात थोपने या बहस जीतने के बारे में नहीं है, बल्कि दुनिया को अपनी उम्मीद का असल आधार बताने के बारे में है।
ये बहुत ही खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली बात है, लेकिन ये करना कितना मुश्किल है, क्योंकि जब कोई इंसान दुख में होता है, दर्द से तड़प रहा होता है, तो उसकी दृष्टि बहुत संकुचित हो जाती है,
टनल विजन हो जाता है।
हाँ, टनल विजन, वो कुछ और देख ही नहीं पाता। स्रोत में एक बहुत ही मशहूर उपन्यास द शैक का भी संदर्भ दिया गया है। उसमें एक बहुत ही गहरी बात कही गई है कि हम दुनिया को अपने दर्द और स्वार्थ के एक छोटे से छेद, यानी एक टाइनी नॉट होल से देखते हैं। ये एनालॉजी मुझे बहुत पसंद आई।
ये बहुत पावरफुल एनालॉजी है।
जैसे लकड़ी के किसी बड़े से दरवाजे में एक बहुत ही छोटा सा सुराख हो और हम उस सुराख में अपनी आंख लगाकर पूरी दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हों। उस छोटे से छेद से हमें पूरी तस्वीर कभी नहीं दिखेगी, सिर्फ वही दिखेगा जो ठीक उस छेद के सामने होगा, यानी हमारा अपना दर्द।
और दिलचस्प बात यह है कि द शैक का वो संवाद हमें हमारी सबसे बड़ी और सबसे गहरी कमजोरी से रूबरू कराता है। जब इंसान दर्द में होता है तो वो उसी छोटे से छेद से ब्रह्मांड को मापता है। उस उपन्यास के संवाद में ईश्वर का स्वरूप उस पीड़ित चरित्र से एक बहुत ही कड़वा सच कहता है। वो कहता है कि इंसान की असली समस्या ये नहीं है कि वो दर्द में है, बल्कि उसकी असली समस्या ये है कि वो मानता ही नहीं कि ईश्वर अच्छा है।
ये बहुत गहरी बात है, क्योंकि जब कुछ बुरा होता है तो हम तुरंत अतीत में झांककर अपनी विपत्ति का कारण खोजने लगते हैं। हम सोचते हैं, मैंने पिछले साल ऐसा क्या किया था जो मुझे आज ये सजा मिल रही है।
हम ब्लेम गेम खेलने लगते हैं।
बिल्कुल, हम उस छोटे से छेद से सिर्फ पीछे देखते हैं। लेकिन डॉक्टर वॉल्टन का यह पूरा अध्ययन हमें यह इशारा कर रहा है कि शायद हमें अतीत में कारण ढूंढने के बजाय भविष्य की ओर देखकर उसका उद्देश्य यानी पर्पस खोजना चाहिए।
ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है।
हाँ, क्योंकि कारण ढूंढने से अक्सर केवल हताशा और अपराध बोध ही मिलता है, जबकि उद्देश्य ढूंढने से जीवन को आगे बढ़ने की एक नई दिशा मिलती है।
मैं इसे ना एक कदम और आगे ले जाना चाहूंगी। द शैक के उस संवाद का सार यह है कि भरोसे का जन्म किसी वैक्यूम में नहीं होता। बिना प्रेम के एहसास के भरोसा कभी पैदा ही नहीं हो सकता। तब तक किसी इंसान को ये यकीन नहीं होगा कि उससे अथाह प्रेम किया जाता है, तब तक वो उस अज्ञात शक्ति पर भरोसा नहीं कर पाएगा। और जब हम अपने उस दर्द के छोटे से छेद से दुनिया को देखते हैं, तो हमें केवल दर्द, नुकसान और मृत्यु दिखाई देती है। उस स्थिति में हम ईश्वर को एक धोखेबाज, अविश्वासी या क्रूर मान लेते हैं।
हम खुद जज बन जाते हैं।
हाँ, हम खुद ही अपने छोटे से दिमाग के साथ न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठ जाते हैं और अपनी अधूरी समझ के आधार पर पूरे ब्रह्मांड और उसके रचयिता को कटघरे में खड़ा कर देते हैं।
तो इसका मतलब है कि अपनी सीमित समझ का अहंकार छोड़ना और एक ऐसी बड़ी योजना पर भरोसा करना जिसे हम पूरी तरह से समझ भी नहीं सकते, यही अंतिम उपाय है। इसी विचार को समेटते हुए डॉक्टर वॉल्टन ने अपने स्रोत के बिल्कुल अंत में रोमियो 11 का जिक्र किया है।
हाँ, रोमन्स 11।
ये हिस्सा साफ साफ और बहुत ही कड़े शब्दों में कहता है कि ईश्वर की बुद्धि और उसके फैसले इंसानी समझ से पूरी तरह परे हैं। वे अनसर्चेबल हैं, जिन्हें खोजा नहीं जा सकता।
हाँ, ये अंतिम हिस्सा हमें बहुत ही विनम्रता के साथ ब्रह्मांड में हमारी सही जगह याद दिलाता है। यह हमें बताता है कि हम इंसान चाहे कितना भी ज्ञान क्यों ना बटोर लें, ईश्वर के सलाहकार नहीं बन सकते।
हम उसे डिक्टेट नहीं कर सकते।
बिल्कुल नहीं। हम उसे ये नहीं बता सकते कि इस दुनिया को कैसे चलाया जाना चाहिए या किसके साथ क्या न्याय होना चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात वहाँ लिखी है, वो हमारे उस लेन देन वाले भ्रम को पूरी तरह तोड़ देती है। वहाँ पूछा गया है कि किसी इंसान ने कभी ईश्वर को ऐसा क्या दिया है जिसे ईश्वर चुकाने के लिए बाध्य हो।
कुछ भी नहीं।
सही उत्तर है, कुछ भी नहीं। उसने हमसे कुछ उधार नहीं लिया है, इसलिए वो हमारा कोई कर्जदार नहीं है।
तो अंततः जब हम ये सब समझ जाते हैं तो प्रतिक्रिया देने का केवल एक ही विकल्प बचता है, और वो है भरोसा। जब हम ये पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं कि हम सब कुछ नहीं समझ सकते, हमारे पास सारे सवालों के जवाब नहीं हैं, तो उस अज्ञानता और दर्द के बीच भी शांत रहना और उस बड़ी योजना पर भरोसा करना ही असली स्वीकृति है।
एकदम सही। ज्ञान को महज दिमाग में रखने वाली जानकारी के रूप में नहीं, बल्कि जीवन जीने और मुसीबतों का सामना करने के एक नजरिए के रूप में अपनाना, यही वो थिंकिंग पॉइंट है जिसकी बात डॉक्टर वॉल्टन कर रहे हैं, और यही बुक ऑफ जॉब की पूरी यात्रा का असली सार है।
वाकई ये एक बेहद ही गहरी और हमारे सोचने के तरीके को चुनौती देने वाली चर्चा रही। आज हमने देखा कि कैसे संकट आने पर फौरी एक्शन पॉइंट से ज्यादा गहरे थिंकिंग पॉइंट्स काम आते हैं। हमने समझा कि कैसे सांत्वना की झूठी और क्षणिक उम्मीद से कहीं बेहतर वास्तविकता की स्वीकृति है, और सबसे बढ़कर हमने ये जाना कि कैसे हमें निस्वार्थ रूप से सही चीजों के लिए खड़ा होना चाहिए, बिना किसी स्वर्ग, इनाम या फायदे की उम्मीद किए।
बिल्कुल।
अब इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाने से पहले जरा सोचने वाली बात है, अगर आज किसी इंसान की जिंदगी से वे सारी चीजें, सफलताएं, स्वास्थ्य और खुशियां अचानक छीन ली जाएं, जिन्हें वो अपना अधिकार या कोई ईश्वरीय उपहार मानता है, तो क्या उसके पास सही और गलत के मार्ग पर टिके रहने का कोई भी कारण बचेगा? क्या बिना किसी इनाम या जन्नत के लालच के केवल अपना अस्तित्व और इस अनंत ब्रह्मांड का सम्मान ही हमारी आस्था और हमारे अच्छे कर्मों का मूल आधार हो सकता है? इस पर विचार कीजिएगा।